पाठ 18 अध्याय 18 और 19।
पिछले सप्ताह हमने उन तीन व्यक्तियों की कहानी शुरू की जो अचानक अब्राहम के सामने प्रकट हुए कि वह उन्हें अपने तंबू में ले आया और उन्होंने बैठकर वहीं खाया जो उनके लिए तैयार किया गया था। इस बात पर बहुत सहमति है कि ये मनुष्य थे या स्वर्गदूत थे या इनमें से कुछ थे, कोई बात नहीं, यहां कुछ अलौकिक घटित हो रहा था। हालांकि वास्तव में वह क्या था यह समझना कठिन था। मुझे अपनी राय पेश करने की मूर्खता की अनुमति दें। मैंने कई अवसरों पर कहा है कि जहां एक ओर मैं त्रिमूर्ति की सामान्य धारणा से पूरी तरह सहमत हूं, अर्थात ईश्वरत्व में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा शामिल हैं, मैं इस धारणा से इसलिए सहमत नहीं हूं कि परमेश्वर की प्रत्येक अभिव्यक्ति को सख्त अर्थों में परमेश्वर के इन तीन व्यक्तियों में से एक को अवतार लेना चाहिए। फिर भी क्या ऐसा हो सकता है कि इन तीन व्यक्तियों की विचित्र यात्रा तीन भाग वाले ईश्वरत्व के एक मॉडल के रूप में थी?
शायद, लेकिन यह वास्तव में पारंपरिक ईसाई अवधारणा के साथ खिलवाड़ डेज करता है कि यदि यही इरादा है तो त्रेकत्व का क्या मतलब है। उदाहरण के लिए, हमने कब पवित्र आत्मा को कोई भौतिक रूप धारण करते हुए सुना है? ईसाई परंपरा यह है कि ईश्वर के सभी भौतिक रूपों को यीशु माना जाता है। क्या हमारे पास अब्राहम के सामने तीन यीशु की स्थिति थी? ये तीनों और क्या प्रतिनिधित्व कर सकते थे? जलती हुई झारी क्या थी? शकीना क्या थी? वह कौन सा बादल था जो इज़राइल को जंगली जंगल में ले गया?
वह प्रभु का दूत क्या था जिसने हाजिरा के समक्ष स्वयं को सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में पहचाना? याकूब के साथ किसने कुश्ती की? और अब हम इन तीन गैर वर्णनात्मक पुरुषों से क्या बना सकते हैं जो किसी तरह स्वयं यहोवा की उपस्थिति का हिस्सा हैं? मुझे लगता है कि जब हम ईश्वर की संभावित अभिव्यक्तियों को कृत्रिम रूप से तीन तक सीमित करने का प्रयास करते हैं तो हम स्वयं के प्रति बहुत बड़ा अहित करते हैं।
ताकि यह संतुष्ट हो और एक तरह से ईसाई सिद्धांत को अच्छा और सुव्यवस्थित बना दे। और मुझे लगता है कि यह विश्वास करना पूरी तरह से मूर्खता है कि हम ईमानदारी से ईश्वर को किसी भी सीमा के अधीन कर सकते हैं। वह इस तरह से मौजूद है कि हम उसकी थाह नहीं ले सकते। वह एक ऐसे आयाम में मौजूद है जिसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि ईश्वर कौन है इसका सबसे छोटा अंश, और कभी कभी हमें बस इसके साथ सहज होने की जरूरत होती है और कुछ रहस्यों को ऐसे ही छोड़ देना होता है।
वे भविष्यवक्ता जिनके पास भविष्य की दूर की चीजों के दर्शन थे, या जॉन जैसे अन्य लोगों को जिन्हें स्वर्ग की झलक मिली, इन चीजों का वर्णन करना और दूसरों को बताना बहुत कठिन लगा। वे उनके पास उन चीजों के वर्णनात्मक वचनों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिनसे वे परिचित थे। जानवर, कीमती पत्थर और धातु, अग्नि, तारे और चंद्रमा, वे और क्या उपयोग करेंगे? फिर भी वे जो देख रहे थे वह या तो आध्यात्मिक प्रकृति का था और इसलिए मानवीय वचन कभी भी इसे पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे, या वे भविष्य में इतनी दूर तक देख रहे थे कि उन चीजों का वर्णन करने के लिए अभी तक वचनों का आविष्कार नहीं किया गया था, जिनका अभी तक आविष्कार नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि हमारे यहां भी ऐसी ही स्थिति है। स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की ईश्वरीय चीज चल रही है, लेकिन इसका वर्णन करने के लिए वचन ही नहीं है। इसलिए लेखक ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, और आप हो सकते हैं, मुझे यकीन है कि किसी भविष्य के लेखक ने शायद वचनों को थोड़ा सा मदद करने की कोशिश की है और अब हमारे लिए इसे और अधिक कठिन बना दिया है। और मुझे यह भी संदेह है कि अब्राहम वास्तव में जो चल रहा था उसमें से कोई भी हेड या टेल बना सकता था जो घटित हुआ। उन्होंने जो कहा वो कहा, यह सच हो गया और वह यही है। अब आइए उस चीज पर वापस आए जिसे हम अपने शारीरिक दिमागों को थोड़ा बेहतर तरीके से घेर सकते हैं। पद 9 एक प्रकार के कथन का उदाहरण है जिसे हम बाइबल में अक्सर देखते हैं, और ये वचन परमेश्वर के मुंह या स्वर्गदूत के मुंह में डाले जाते हैं। तीनों में से एक व्यक्ति अब्राहम से कहता है, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? यह एक अलंकारिक प्रश्न है। यह सारा के बारे में बातचीत शुरू करने का एक अच्छा तरीका है।
ऐसा नहीं है कि इन लोगों को इसका जवाब नहीं पता। तथ्य यह है कि आत्माएं और विशिष्ट ईश्वर और मनुष्यों के साथ संवाद करने के लिए चीजों को बहुत गंभीरता से कम करना पड़ता है। इसलिए हमें ईश्वर और स्वर्गदूतों से संबंधित बहुत सारा आलंकारिक और आलंकारिक कथन मिलते हैं। इस प्रकार के बयानों के कारण मानवीय गुणों, कमजोरियों, अपूर्णताओं और कमजोरियों को स्वर्गदूतों या परमेश्वर पर थोपने की कोशिश न करें। अब इस रहस्यमय यात्रा का उद्देश्य आता है पद 10 में, 3 में से एक ने अब्राहम को सूचित किया कि वह एक वर्ष में वापस आ रहा है और तब तक सारा एक पुत्र को जन्म देगी। अब्राहम को पुत्र देने का यहोवा का वादा कदम दर कदम पूरा होता रहा है। सबसे पहले उत्पत्ति 12:2 में परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि वह अब्राहम को एक महान राष्ट्र बनाएगा, जो अब्राहम को बताता है कि उसके कई बच्चे होंगे। दूसरा उत्पत्ति 15:4 में अब्राहम को एक उत्तराधिकारी देने का वादा किया गया है और वह उत्तराधिकारी अब्राहम का प्राकृतिक रूप से जन्मा पुत्र होगा। तीसरा उत्पत्ति 17:16-21 में अब्राहम को आश्वासन दिया गया था कि उसकी पत्नी सारा उसे एक बेटा देगी। और अब यहां 18:10 में उन सभी वादों को पूरा करने का समय आ गया है। अब इस बुनियादी और सुंदर सरल ईश्वर सिद्धांत को क्रियान्वित होते हुए देखें। ध्यान दें कि कैसे परमेश्वर का प्रत्येक वादा पहले के वादों पर आधारित है और कैसे प्रत्येक वाचा पिछले वाचाओं पर बनाया गया है। एक नया वादा या नई वाचा पहले वाले को प्रतिस्थापित या निरस्त नहीं करती है, यह बस पहले वाले का योग लेता है। अगला स्तर, जब कोई घर बनाता है तो उसकी शुरुआत जमीन तैयार करने से होती है। उस तैयार जमीन के ऊपर नींव बनाई जाती है। कोई अब नींव के नीचे की जमीन नहीं देख सकता, लेकिन वह अभी भी वही है। उस नींव पर पहली मंजिल बनाई जाती है। कोई अब नींव नहीं देख सकता, लेकिन वह अभी भी वही है। पहली मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल बनाई गई है, इत्यादि। पूर्व पर निर्मित एक चीज जमीन के बिना आपके पास नींव नहीं हो सकती, नींव के बिना आपके पास पहली मंजिल नहीं हो सकती, पहली मंजिल के बिना आपको दूसरी मंजिल नहीं मिल सकती।
फिर भी अगर कोई किसी तरह जादुई तरीके से नींव के नीचे से तैयार जमीन को हटा सके, इमारत ढह जाएगी। यदि आप पहली मंजिल के नीचे से नींव हटा सकें तो इमारत गिर जाएगी। यदि आप पहली मंजिल को दूसरी मंजिल के नीचे से खिसका सकें तो इमारत तुरंत मलबे में बदल जाएगी। घर की संरचना का प्रत्येक भाग दूसरे पर निर्भर, एक को छोड़ दे या एक को हटा दे तो घर नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर की वाचाएं इसी प्रकार कार्य करती हैं। नई वाचा, यीशु मसीह की वाचा, ऐसी वाचा नहीं है जो पहले की वाचा को प्रतिस्थापित करती हो, न ही यह अकेली है। नई वाचा पिछली सभी वाचाओं पर निर्भर है और यह पिछली सभी वाचाओं की पूर्ति है। प्रत्येक वाचा अपने पूर्ववर्ती वाचाओं पर बनी है। एक उत्तराधिकारी को लाने में अब्राहम से किए गए परमेश्वर के वादे ने चरणों में उसकी इच्छा को पूरा करने का यह नमूना स्थापित किया है। खैर, सारा जो इन तीन लोगों के बारे में उत्सुक थी, जैसा कि कोई भी हो सकता है, तंबू की दीवारों के माध्यम से सुन रहा था। ऐसा करना बहुत मुश्किल नहीं था और जो कहा गया था उसे सुन रहा था। वह उस हंसी को दबाने की कोशिश करने से लगभग चूक गई जो उसके अंदर से फूटना चाहती थी। यकीन मानिए, यह ओह बॉय, मैं मुश्किल से बच्चे के आने का इंतजार कर सकती हूं वाली हंसी नहीं थी। यह था ये यो यो कौन है और क्या इन सबके बीच एक अच्छा दिमाग है, एक प्रकार की हंसी। दूसरे वचनों में सारा उपहास में हंसी। ओह, यहोवा कहता है, सारा क्यों हंसी? भंडा फूट गया। परमेश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सारा को एक बेटा होगा, क्योंकि उसने यह तय कर लिया है और यह एक साल के भीतर होने जा रहा है। सारा फिर स्वाभाविक कार्य करती है। उसने इस बात से इनकार किया कि वह हंसी थी। परमेश्वर कहते हैं, अरे हां तुमने किया। यह सामना जितनी अजीब रही है, यहां तक कि सारा के साथ यहोवा की थोड़ी बहस के साथ समाप्त होता है। यह एक और तरीके से जारी रहता है। अब्राहम के तंबू से तीन आदमी सदोम के दुष्ट शहर और अब्राहम के लिए निकले तो री दूरी तक उनका साथ देता है। पद 17-19 में
हमें उस चीज की झलक मिलती है जो हम पवित्र धर्म ग्रंथ में शायद ही कभी करते हैं। हम ईश्वर के मन में देखते हैं और हमें ईश्वर के निर्णय के पीछे का तर्क दिया जाता है। मैंने आपको एक से अधिक अवसरों पर कहा है कि धर्म ग्रंथों में क्यों की तलाश न करें, बल्कि नमूना की तलाश करें। यहां कुछ समयों में से एक के लिए हमें बताया गया है कि क्यों, और यह क्यों सदोम और अमोरा के प्रति परमेश्वर के व्यवहार के बारे में है, और क्या अब्राहम को परमेश्वर की योजनाओं के बारे में पहले से पता होना चाहिए था या नहीं, और कम से कम एक बात जो हमें इससे सीखनी चाहिए वह यह है कि परमेश्वर मानव जाति के लिए अपनी योजनाओं को गुप्त नहीं रखते हैं। वह लोगों और राष्ट्रों पर अपने निर्णय के कारणों को गुप्त नहीं रखता है, वह आशीष देने के कारणों को गुप्त नहीं रखता। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं वह यह है कि ईश्वर अपना प्रकटीकरण करेगा और अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा, लगभग विशेष रूप से अपने इब्रानी लोगों के माध्यम से। यही अब्राहम के साथ शुरुआत करते हुए पहली इब्रानी होगी।
जब अब्राहम को सदोम को उजारने की ईश्वर की योजना का पता चलता है तो वह अच्छी तरह से जानता है कि उसका भतीजा वहां रह रहा है। वह ईश्वर के साथ एक विशिष्ट मध्य पूर्वी सौदेबाजी सत्र में चला जाता है। लेकिन जो हम वास्तव में देख रहे हैं वह कई चीजें हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अब्राहम को खुद से ज्यादा परवाह है। दूसरा, हमें ईश्वर की न्याय और धार्मिकता की परिभाषा की झलक मिल रही है। तीसरा, जब न्याय या प्रतिशोध की आवश्यकता प्रतीत होगी तो हमें ईश्वर की दया की झलक मिल रही है। अब चौथी चीज जो हम देखते हैं वह बिल्कुल आकर्षक है। पश्चाताप सदोम की कहानी में कोई भूमिका नहीं निभाता है, नूह की जल प्रलय की कहानी में इससे अधिक भूमिका निभाता है। मैंने कुछ अवसरों पर उल्लेख किया है कि लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, मरने और स्वर्ग जाने की धारणा पुराने नियम में कहीं नहीं पाई जाती है। खैर, वास्तव में पश्चाताप की पूरी अवधारणा कहीं नहीं पाई जाती है, फिर भी उत्पत्ति में और इसे विकसित होते देखने में हमें कुछ समय लगेगा। एकमात्र मुद्दा अब तक पता चला है कि मानव जाति के व्यवहार के संबंध में परमेश्वर की न्याय प्रणाली में यह है, क्या वह व्यक्ति परमेश्वर की नजर में धर्मी है या नहीं। दुष्ट दुष्ट ही रहता है और धर्मी धर्मी ही रहता है। हम नूह को दुष्टों से पश्चाताप करने की याचना करते हुए नहीं पाते हैं, हम अब्राहम को दुष्टों से पश्चाताप करने की याचना करते हुए नहीं पाते हैं। अब्राहम की याहवे से विनती में यह इस बारे में नहीं है कि जो लोग गलत कर रहे हैं वे पश्चाताप कर सकते हैं और अपनी बुराई से दूर हो सकते हैं। यह केवल इस बारे में है कि क्या जो लोग गलत नहीं कर रहे हैं उन्हें उन लोगों के साथ सही आंका जाएगा जो गलत कर रहे हैं। हम यह भी देखते हैं कि मूसा और माउंट सिनाई की व्यवस्था से बहुत पहले परमेश्वर सभी मानव व्यवहार के लिए कुछ सार्वभौमिक मानक लागू कर रहे थे। इब्रानियों ने इस मानक को सात नूहाइड व्यवस्था के रूप में संदर्भित किया है, और इस अध्याय में हम देखते हैं कि सदोम ने दुष्टता की सीमा पार कर ली है जो उस मानक का उल्लंघन करती है, और परमेश्वर अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चूंकि वह रेखा पार हो गई है, एकमात्र संभावित परिणाम यह है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर आएगा। अब सदोम के पापों की विशिष्टताओं पर बहस हो सकती है और नियमित रूप से होती रहती है, लेकिन जो स्पष्ट है वह यह है कि वे नैतिक हैं या बेहतर अनैतिक हैं। जैसे ही लूत फिर से चित्र में प्रवेश करता है हमें कुछ विशिष्ट पापों का उल्लेख मिलेगा, जैसे लौंडेबाजी और समलैंगिकता, लेकिन हमें कभी सदोम के बुरे कृत्यों की विस्तृत सूची नहीं मिलती। मुझे यह भी तुरंत बताना चाहिए कि सदोम 5 शहर वाले जिले का प्राथमिक शहर और सरकारी सीट था जो सामान्य शासन के अधीन था। गोमोरा उन 5 शहरों में से एक था। इसलिए जब केवल सदोम नाम का उल्लेख किया जाता है तो यह सिर्फ इतना है कि सदोम पूरे जिले का प्रतिनिधि है। जब अंततः विनाश बरसाया गया तो यह सभी 5 शहरों पर था। इस मौखिक कुश्ती मैच के उद्देश्य के बारे में सभी प्रकार के रूपक उपदेश और शिक्षाएं दी गई हैं, लेकिन यहां वह बात है जो मैं व्यक्तिगत रूप से इससे लेता हूं। ईश्वर दुष्टों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट नहीं करता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि जब परमेश्वर विजयी सेना को अपने लोगों को अनुशासित करने की अनुमति देता है तो धर्मी लोग भी नहीं मारे जाते हैं। नहीं, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वह यह है कि जब परमेश्वर अपना अलौकिक दैवीय क्रोध, उदाहरण के लिए जल प्रलय की तरह, और जल्द ही सदोम और अमोरा पर डालते हैं, तो वह दुष्टों के साथ धर्मियों को मरने की अनुमति नहीं देते हैं। ईश्वर द्वारा अपना अलौकिक क्रोध प्रकट करना और बुरी चीजों को घटित होने की अनुमति देना, जिससे सभी प्रभावित होते हैं, के बीच एक बड़ा अंतर है।
उदाहरण के लिए मान लें कि बरावाला सैन फ्रांसिस्को को प्रभावित करता है। वह 9.0 का वह भूकंप जिसने शहर को पूरी तरह से विनाशकारी बना दिया और हजारों लोग मारे गए। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे समय में सैन फ्रांसिस्को को एक प्रकार के सदोम और अमोरा के रूप में माना जाता है। तो क्या हमें इस काल्पनिक 9.0 भूकंप को उस शहर पर परमेश्वर के क्रोध के प्रकोप के रूप में लेना चाहिए? नहीं, यह कि भूकंप आया एक तरह से, वास्तव में यहोवा द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी, लेकिन यह यहोवा का कार्य नहीं था। दुष्टों के साथ साथ अच्छे लोगों को भी मार दिया जाएगा, जैसा कि सदियों से हुई इन सभी प्रलयंकारी घटनाओं के साथ होता है। लेकिन भूकंप दोष लाखों वर्षों से अस्तित्व में है, और उस आकार के भूकंप उस दोष रेखा पर पहले भी आ चुके हैं। बात बस इतनी है कि अब लाखों लोग वहां रहते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। परमेश्वर का क्रोध तब प्रस्फुटित होता है जब परमेश्वर विपत्ति भेजता है। यह अद्वितीय है, इसका दायरा इतना है। प्रकृति जो सामान्य रूप से कर सकती है उसे कहीं अधिक, और यह ऐसे समय में घटित होता है जब ईश्वर ने नियत किया है। जल प्रलय इसका एक उदाहरण है, सदोम और अमोरा का विनाश। दुनिया के अंत में पृथ्वी की आबादी ऐसी घटना देखेगी जिसे मनुष्य ने पहले कभी नहीं देखा होगा, और बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि ईश्वर इसे निर्णय के रूप में भेज रहा है।
इसके अलावा परमेश्वर के क्रोध का प्रकोप पर्याप्त चेतावनी से पहले होता है, यह अचानक और अघोषित नहीं है। और जब यह परमेश्वर का विनाशकारी क्रोध होता है तो अच्छे लोग दुष्टों से अलग हो जाते हैं। फिर जल प्रलय और सदोम और अमोरा हमारे उदाहरण हैं, और जैसे ही हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं हम वही नमूना देखते हैं। जो मसीह हैं उनकी रक्षा की जाएगी, जैसे दुष्टों को विनाश के लिए चुना जाता है।
यह परमेश्वर के व्यवहार का एक नमूना है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। फिर भी एक और नमूना था जिसने पैगंबरों और संतों को चकित कर दिया। वे अक्सर पूछते थे, क्या ईश्वर दुष्टों को फलने फूलने देता है? और उत्तर, हालांकि अधिकांश मायनों में रहस्यमय है, इसका उनकी दुष्टता से कुछ लेना देना है। कार्य या तो उस दुष्ट गतिविधि के माध्यम से पूरी होने वाली परमेश्वर की योजना के एक चरण का हिस्सा होते हैं, या दुष्टों के कार्यों के माध्यम से उसके लोगों को कुछ लाभ मिलता है। हालांकि यह निश्चित रूप से दुष्टों का उद्देश्य परमेश्वर के लोगों को लाभ पहुंचाना नहीं है। इसलिए भले ही यहोवा अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होने की अनुमति देता है, हम यह भी निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर अपना क्रोध दुष्टों पर नहीं बरसाएंगे और अपने लोगों को भी अलौकिक विनाश में मरने नहीं देंगे, क्योंकि यह वह नहीं है जो परमेश्वर करता है। यह उनके चरित्र में नहीं है। उत्साह का उद्देश्य अपने चुने हुए को सुरक्षित स्थान पर ले जाना है।
इससे पहले कि हम अध्याय 19 पर आगे बढ़ें और सदोम और अमोरा का विनाश मैं ईश्वर और अब्राहम के बीच संवाद का एक सामान्य गलत उद्धरण बता दूं। अंतिम सौदेबाजी संख्या 10 निर्दोष लोगों की थी, एक नहीं। और हम इसमें पाएंगे बाइबल के बाद की पुस्तकों में कहा गया है कि उपयोगी मंडली के आकार के लिए 10 एक सामान्य न्यूनतम संख्या है। आज तक यहूदी आमतौर पर 10 से कम व्यक्तियों के समूह में कोई सेवा नहीं करेंगे, न ही प्रार्थना भी करेंगे। इब्रानी में इसे मिनियन कहा जाता है। तो यहोवा कह रहा था कि यदि दुष्ट आबादी के बीच में एक मिनियान होगा तो वह न्याय का अपना हाथ रोक देगा।
अब बातचीत समाप्त हो गई है और पद 33 में कहा गया है कि प्रभु चले गए। दरअसल मूल इब्रानी में कहा गया है यहोवा चला गया। यहोवा का चला जाना कुछ बात है,
जब हम अगला अध्याय शुरू करें तो ध्यान रखें, उत्पत्ति अध्याय 19 एक से 14 पढ़ें।
अध्याय 19 में हमें अध्याय 18 में उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर मिलता है। ये तीन व्यक्ति कौन हैं जो अब्राहम के पास आए थे? हम पहले ही जान चुके हैं कि तीन में से एक स्वयं ईश्वर था, यहोवा। उनके व्यक्तिगत नाम के लिए युद्ध हे वाव या हवे अध्याय 18 के पद 3 में वास्तविक मूल इब्रानी पाठ है। अध्याय 19 के पहले पद में हमें बताया गया है कि अन्य दो दूत हैं। इस संबंध में प्रयुक्त इब्रानी वचन मालाच का अर्थ स्वयं स्वर्गदूत नहीं है, इसका अर्थ संदेशवाहक है और बाइबल में इसका प्रयोग अक्सर मानव दूत के संदर्भ में किया जाता है। यह इस संदर्भ से है, अर्थात इन दूतों ने सदोम के लोगों को अंधा कर दिया और अन्य अलौकिक कर्तव्य दिखाए, जिससे हम समझते हैं कि वे वास्तव में स्वर्गीय दूत हैं जिन्हें हम स्वर्गदूत कहते हैं।
अब मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, हम इस सप्ताह और शायद अगले सप्ताह कुछ बहुत ही कठिन क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। मैं कुछ सिद्धांतों को चुनौती देने जा रहा हूं जिन्हें सदियों से सत्य के रूप में लिया गया है, लेकिन जैसा कि मनुष्यों के बहुत सारा सिद्धांत है, उनका पवित्र धर्म ग्रंथों में कही गई बातों से बहुत कम संबंध है।
तो हम इस घटना से यहोवा और या स्वर्गदूतों के बारे में क्या सीख सकते हैं? एक बात के लिए, स्वर्गदूतों में भौतिक आयाम लेने की क्षमता होती है। वास्तव में यदि हम पवित्र शास्त्र से स्वर्गदूतों के बारे में एक ठोस बात बता सकते हैं तो वह यह है कि आम तौर पर जब वे मनुष्यों के साथ बातचीत करते हैं तो वे मानव रूप धारण कर लेते हैं। सामान्यतया बाइबिल की कहानी में मनुष्यों को पहले यह एहसास नहीं होता है कि ये पुरुष जिन्हें वे देख रहे हैं और जिनसे बात कर रहे हैं वे वास्तव में बिल्कुल भी पुरुष नहीं हैं, बल्कि स्वर्गदूत हैं। अक्सर हम देखेंगे कि एक बार इंसानों को एहसास हो जाता है कि ये आदमी स्वर्गदूत हैं, भय स्थापित हो जाता है और मनुष्य पूजा करते समय अपने चेहरे के बल गिर जाते हैं या सचमुच डर से बेहोश हो जाते हैं, जो स्पष्ट रूप से मुख्य कारण है कि स्वर्गदूत सबसे पहले मानव रूप धारण करते हैं। यानी तो वे वस्तुतः मनुष्यों को इस हद तक न डराएं कि वे पूरी तरह से भटकाव या यहां तक कि मृत्यु तक पहुंच जाए। दिलचस्प बात यह है कि कलीसिया में परमेश्वर के सभी आध्यात्मिक सेवकों को स्वर्गदूत कहने की प्रवृत्ति रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वर्गदूत, संदेशवाहक, मालाच जाहिर तौर पर कुछ हद तक निम्न आत्मा वाले प्राणी हैं जिनके पास हमेशा स्वतंत्र इच्छा या स्वतंत्रता नहीं होती है। उन्हें यहोवा के विशिष्ट आदेशों के तहत विशिष्ट कार्य करने के लिए स्वर्ग से भेजा जाता है। उनके पास इस मामले में अपनी व्यक्तिगत इच्छा का प्रयोग करने का कोई अधिकार या विकल्प नहीं है, इसीलिए वे वास्तव में संदेशवाहक हैं। वे संदेश का निर्माण नहीं करते, वे बस उसे संप्रेषित करते हैं, और संदेश विनाश के रूप में हो सकता है जिसे पूरा करने के लिए उनके पास स्पष्ट रूप से लगभग असीमित बल हो सकता है।
तो स्वर्गदूत केवल कुछ विशिष्ट आध्यात्मिक प्राणी हैं और वे स्पेक्ट्रम के निचले सिरे पर हैं। स्पेक्ट्रम के ऊपरी सिरे पर करूब हैं। ये ऐसे प्राणी हैं जो वस्तुतः ईश्वर के सबसे करीबी सेवक हैं। वे ऐसे प्राणी हैं जो परमेश्वर की पवित्रता की रक्षा करते हैं। ये वही हैं जिनके बारे में यहेजकेल बात करता है, जिनके कई चेहरे और कई पंख हैं। करूब स्वर्गदूत नहीं हैं, वे स्वर्गदूतों से भी ऊंचे हैं और स्वर्गदूतों से भिन्न उद्देश्य को पूरा करते हैं। और अन्य प्रकार के आध्यात्मिक प्राणी भी हैं जो बाइबिल में सूचीबद्ध हैं, लेकिन हम अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं बस ये चाहता हूं कि आप यह समझें कि जब हम आध्यात्मिक प्राणियों के बारे में सोचते हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी आध्यात्मिक प्राणी केवल स्वर्गदूतों का एक वर्ग या दूसरा वर्ग है, बल्कि स्वर्गदूत केवल एक प्रकार के आत्मिक प्राणी हैं जिनमें से कई प्रकार के आत्मिक प्राणी हैं। लेकिन अब्राहम और सारा की कहानी में इस स्थिति के बारे में क्या, जिसमें यहोवा के पास स्वर्गदूतों के समान मानव रूप है? आइए एक मिनट रुकें और इसके बारे में सोचें। क्योंकि यहोवा ने यहां भौतिक मानवीय रूप धारण किया था, उसने यीशु के साथ भी ऐसा ही क्यों नहीं किया या उसने किया? दूसरे वचनों में, यहाँ निहितार्थ यह है कि यह मनुष्य रूप जिसे परमेश्वर ने धारण किया था उसी प्रकार किया गया था जैसे स्वर्गदूतों ने मानव रूप धारण किया था। अर्थात मानव रूप इस अर्थ में एक वास्तविक मनुष्य नहीं था कि उसने एक शिशु के रूप में जीवन शुरू किया,
बड़ा हुआ और परिपक्व हुआ और फिर अंततः परमेश्वर की आत्मा द्वारा कब्जा कर लिया गया या नियोजित हो गया। यह सच्चे अर्थों में एक आदमी नहीं था, कुछ संदेहहीन मांस और रक्त का आदमी था जो सामान्य जीवन जी रहा था जब परमेश्वर ने अचानक प्रवेश किया और उसके शरीर का उपयोग अपने हाथ में ले लिया ताकि यहोवा अब्राहम को दिखाई दे सके। यह स्पष्टतः एक आदमी का आभास था, एक आदमी जो अन्यथा अस्तित्व में नहीं था, कोई भूत नहीं और फिर भी कोई मनुष्य नहीं जो गर्भ से आया हो, लेकिन एक मांस और रक्त का आभास। दूसरी ओर यीशु एक महिला से पैदा हुआ था, किसी भी सामान्य बच्चे की तरह बड़ा हुआ और परिपक्व हुआ, यहूदी समाज का हिस्सा और अंततः एक वयस्क यहूदी पुरुष बन गया। वह एक विलक्षण और अद्वितीय इंसान थे जैसा कि इस कमरे में मौजूद हम में से कोई भी है। जैसे कोई दूसरा बेकी ब्रैडफोर्ड या टॉम गैम्बल या पेटी ब्रायन नहीं है जो कभी पैदा हुआ हो या कभी होगा, वैसे ही नासरत का एक यीशु मसीहा है जो कभी पैदा हुआ है या कभी होगा। लेकिन यीशु किसी मनुष्य का आभास नहीं था जैसा अब्राहम को दिखाई दिया था, न ही वह कोई साधारण आदमी था आपके या मेरे जैसा जिसका भौतिक रूप अचानक सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बन गया, बल्कि ईश्वर के स्वयं के शुद्ध सार ने उसे प्रतिस्थापित कर दिया जो सामान्य रूप से एक मानव नर का बीज होना चाहिए था, और यहोवा के उस शुद्ध सार ने मरियम मैरी को गर्भवती कर दिया, और परिणाम यह हुआ कि यह समग्र अस्तित्व था जिसे हम यीशु कहते हैं, लेकिन उसका असली इब्रानी नाम यीशु था, या उससे भी अधिक सही ढंग से यीशुआ। मैं समग्र प्राणी कहता हूं क्योंकि उनके पिता परमेश्वर थे और उनकी मां इंसान थी। यीशुआ उतना ही अनोखा था जितना कि यह होता है। अब जहां तक यहोवा के अब्राहम को एक मनुष्य के रूप में प्रकट होने का संबंध है, मैं ऐसे निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता जहां ऐसा कोई सबूत ही ना हो जो हमें किसी ठोस निष्कर्ष पर ले जा सके, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे विश्वास नहीं है कि यह यीशु था जो प्रकट हुआ था। एक बात के लिए बाइबल इस व्यक्ति को यहोवा कहती है, फिर भी निहितार्थों पर गहराई से विचार किए बिना यहोवा और दो स्वर्गदूतों की इस अजीब उपस्थिति को छोड़ना भी मुश्किल है। मुझे लगता है कि अब्राहम, यहोवा और दो स्वर्गदूतों के मामले से निपटने में समस्या हमने अपने लिए पवित्र ट्रिनिटी के आधुनिक निर्माण के कारण पैदा की है, जो कलीसिया के शुरुआती दिनों से पूरी तरह से अनुपस्थित है। ईश्वर को समझाने के प्रयास में आधुनिक कलीसिया कहता है कि वह तीन व्यक्तियों से बना है। इस तीन व्यक्तियों की अवधारणा ने हमारे मन में एक ईश्वर की कल्पना पैदा की है जिसमें स्वतंत्रता दिवस जैसी साइंस फिक्शन फिल्म की सभी विशेषताएं हैं, जिससे हमारे पास एक मदरशिप है या हमारे मामले में एक फादरशिप है जो पृथ्वी से कुछ दूरी पर तैनात रहता है, और कुछ बहुत शक्तिशाली लेकिन छोटे जहाज जो एक प्रकार से उस मातृ जहाज का जैविक हिस्सा है, लेकिन जरूरत पड़ी देखने पर वे अलग हो सकते हैं और जाकर उस बुद्धि के आदेश का पालन कर सकते हैं जो पूरी इकाई को नियंत्रित करती है। छोटे जहाज मूल जहाज के अधीन होते हैं भले ही वे इसका हिस्सा हों, और इसलिए वे विदेशी मदरशिप की उपस्थिति, शक्ति और अधिकार को विभिन्न जीवन रूपों के संपर्क में लाते हैं, मुख्यतः मनुष्य। बेशक कई बार ऐसा भी होता है कि मातृत्व इसके सभी हिस्से पुरुषों से निपटने के लिए समग्र रूप से आने का विकल्प चुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि ईश्वर कौन है इसकी इस तरह की समझ बहुत मददगार है। हमारी मूल समस्या यह है कि हम तीन चार वास्तव में आयामों में सोचने तक ही सीमित हैं, इसलिए हम परमेश्वर के बारे में टुकड़ों में सोचते हैं, विभिन्न टुकड़े जो मिलकर संपूर्ण बनाते हैं भागों का योग। हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता कोई चीज एक कैसे हो सकती है, लेकिन एक से अधिक कैसे हो सकती है। फिर भी तोरा बिल्कुल यही कहता है कि ईश्वर वही है। यीशु एक मनुष्य और एक ही समय में परमेश्वर कैसे हो सकता है? यीशु एक ही समय में पृथ्वी पर परमेश्वर और स्वर्ग में परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? यीशु यहोवा के अधीन कैसे हो सकते हैं फिर भी यह कहने में सक्षम हो सकते हैं कि यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को भी देखा है? मेरा मतलब है, उस कथन की विशालता के बारे में सोचें। यीशु मूल रूप से कह रहा है कि यदि आपने भाग्य देखा है तो आपने पूरा देखा है।
उन्होंने यह भी कहा कि वह और पिता एक हैं। एक किस प्रकार?
अब मैं यही बता दूं कि मैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के विचार को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं जिस चीज को चुनौती दे रहा हूं वह यह है कि इस विचार को आम तौर पर हमारे सामने कैसे प्रस्तुत किया गया है और किस तरह से इसे संरचित किया गया है, और उस विशेष तरीके या सिद्धांत को संरक्षित करने के लिए इब्रानी से अन्य सभी भाषाओं में बाइबल के अनुवादों में कुछ चीजें की गई हैं जो कुछ ऐसी धारणाओं को कायम रखती हैं जो पवित्र शास्त्र से मेल नहीं खाती हैं, और शायद सबसे बड़ी चूक परमेश्वर के नाम के इस्तेमाल से संबंधित है। आप में से कुछ लोग जो कुछ समय से मेरे साथ हैं उन्होंने मुझे पुराने नियम में ऐसा कहते हुए सुना है। परमेश्वर का नाम 6000 से अधिक बार प्रयोग किया गया। अब इब्रानी शास्त्र हमें बताते हैं कि परमेश्वर का नाम यहोवा है। बहुत पहले अन्य जातियों ने यहोवा के स्थान पर यहोवा वचन का उपयोग करना शुरू कर दिया था कि क्या यहोवा यहोवा के लिए एक उचित और सही विकल्प नहीं है। यह इस शोध प्रबंध का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि यदि आप अपनी बाइबल खोलते हैं और यह गिनना शुरू करते हैं कि यहोवा या याहवे वचन का प्रयोग कब कब किया गया है तो यह केवल मुट्ठी भर है। कुछ बाइबल संस्करणों में परमेश्वर के नाम का उपयोग 10 से भी कम है, कम बार किया गया है। अन्य लोग 100 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बस इतना ही। तो मूल इब्रानी धर्म ग्रंथों में 5900 बार परमेश्वर का नाम इस्तेमाल किए जाने का क्या हुआ?
परमेश्वर के नाम के स्थान पर प्रभु या ईश्वर वचन रख दिए गए? ऐसा क्यों किया गया यह भी मुद्दा नहीं है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि यह सच है। और मैं आपको कोई नई या मौलिक बात नहीं बता रहा हूं। इस पर बाइबल विद्वानों ने विवाद नहीं किया है, न ही यह कोई रहस्य है। आप कोई भी सक्षम इब्रानी पुराना नियम उठा सकते हैं और इब्रानी वचन युद्ध हे वाव हे ढूंढ सकते हैं जो याहवे यहोवा परमेश्वर का नाम लिखता है और इसे अपने लिए गिने।
लेकिन इससे एक सवाल पैदा होता है, और शायद आज किसी को, यहां तक कि मेरा भी, किसी को भी इसका उत्तर संतुष्ट नहीं कर पाएगा। यह क्या है? यहोवा कौन है या क्या है? क्या यहोवा परमेश्वर पिता है? इस अर्थ में कि परमेश्वरत्व में तीन तत्व शामिल हैं जिन्हें हम पवित्र आत्मा, यीशु को मसीहा और यहोवा को पिता कहते हैं। अथवा क्या यहोवा संपूर्ण ईश्वरत्व का नाम है, भागों के योग का नाम? साथ ही हमें यहवे के अलावा ईश्वर के लिए कई नाम मिलते हैं। एल शद्दाई सबसे पहला नाम है।
यह समस्या वास्तव में कोई बड़ी समस्या नहीं लगती जब हमारी बाइबल में परमेश्वर का नाम कम विशिष्ट वचनों परमेश्वर और परमेश्वर से बदल दिया जाता है। अर्थात क्योंकि यहोवा को प्रभु कहा जाता है और यीशु यहोवा को प्रभु भी कहा जाता है, तो जब प्रभु वचन का प्रयोग किया जाता है तो किसका उल्लेख किया जाता है? यीशु या यह यहोवा है। इसलिए परमेश्वर वचन का प्रयोग करने से परमेश्वर और मसीहा के बीच का अंतर मिट जाता है। इसलिए जब हमारे नए नियम यीशु को प्रभु के रूप में संदर्भित करते हैं और फिर हम पीछे जाते हैं और पुराने नियम की भविष्यवाणी को देखते हैं जो मसीहा के बारे में प्रतीत होती है, और इसमें भी प्रभु वचन का उपयोग किया गया है, तो ये मान लेना आसान है कि हम आसानी से ऐसा कर सकते हैं। इसके स्थान पर यीशु का नाम भरें और सभी टुकड़े अच्छी तरह से एक साथ आ जाते हैं, और वास्तव में ये वही है जो सदियों से किया जा रहा है।